أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين والرسل وعلى آله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين، مولانا ومقتدانا صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الداعم على أعدائهم، أعداء الله وأعداء كتاب الله وأعداء رسول الله وأعداء آل رسول الله، لعنة أبد العابدين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ورد في زيارة الأربعين: ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حده بالأرض للأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكس وتقترص وتردى في هواه. حضرانِ سید الشہداء علیہ السلام، ہم آستانِ اربعین میں ہیں اور اربعین کے کچھ جملے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں جو زیارت اربعین ہے، انشاءاللہ جس کی ہم تھوڑی دیر میں قرات کریں گے مجلس کے بعد، اور یہ شرف بھی پائیں گے. اس زیارت کے اندر ایک جملہ یوں آتا ہے کہ فرماتے ہیں: وَمَنَحَ النُّصْحِ، یعنی اے مولا، یہ معصوم نے تعلیم دی ہمیں، فرمایا کہ یعنی آپ نے منح النص کیا. منح النص کا مطلب کیا؟ آپ نے بخشا، آپ نے عطا کر دیا بندگان خدا کے لیے اچھائی، آپ نے اچھائی دے دی اللہ کے بندوں کے لیے. اور آپ نے کیا کیا؟ یہ اچھائی نصیحت کی شکل میں، نص نصیحت سے ہے، نصیحت کی شکل میں بخش دی. جزاکم اللہ، بہت شکریہ، جزاکم اللہ، کی شکل میں بخش دی. اور اس سلسلے میں آپ نے کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی طریقہ اور وسیلہ جو جائز تھا اسے استعمال کرنے سے آپ پیچھے نہیں ہٹے. جمعے میں بھی عرض ہو رہا تھا کہ آخری لمحات میں بار بار جو جملہ امام نے ارشاد فرمایا وہ یہ تھا: یا ایوہ الناس، کبھی فرماتے تھے یا قوم، یعنی قوم یعنی اے لوگو، اے مجموعہ، اے جو گروپ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، جو اکٹھے ہو چکے ہیں، اکٹھ وغیرہ. کبھی فرماتے تھے یا ایوہ الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی ولا تعجلوا، جلد بازی نہ کرو، میری بات سنو. حتی اعیدکم بما یحق لکم علیہ، عجیب ہے یہ بخشش و عطا کے انداز ہیں. فرماتے تاکہ میں جو تمہارا حق ہے نا، بنوان امام معصوم کی تم معموم ہو، اللہ کا نمائندہ ہوں کہ تمہیں ہدایت دینی ہے، اس سے نجات کی کشتی ہوں کہ تمہیں نجات دینا ہے، چراغ ہدایت ہوں کہ تمہیں گمراہی سے نکالنا ہے. لہٰذا اس حوالے سے جو تم ایک حق رکھتے ہو میرے اوپر، لہٰذا مجھے وقت دو کہ میں اس تمہارے حق کو تمہیں دے دوں اور تمہیں نجات دے دوں، تمہیں گمراہی سے بچاؤں، تمہیں واعظ و نصیحت کروں. یہ آخری لمحات تک یہ جملے امام نے ارشاد، یہاں تک کہ ڈول پیٹنا شروع کر دیا اور حق کی آواز کانوں تک پہنچنے نہ دی. یاد ہے نا کہ امام نے اس وقت فرمایا، ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ تمہارے کانوں تک میرے حق کی آواز پہنچ نہیں پا رہی اور تم پہنچنا دینا نہیں چاہتے ہو. بنیادی تو رہوا یہ ہے کہ تمہارے باپ داداؤں نے تمہیں حرام و حلال دے کے بغیر کھلایا پلایا. آج وہ تمہارا، پہلے تمہارا گوشت پوش بنا، تمہارا جسم بڑا، آہستہ آہستہ وہ تمہارا وجدان اور مزاج بن گیا، اسی چیز سے بچ گیا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بنا کہ وہ تمہاری فطرت ثانویہ، دوسری فطرت اور نیچر بن گیا. اب صورتحال یہ ہے، جب تمہارے پاس اچھی بات آئے گی، جب تمہیں حق کی بات کہی جائے گی، جب حق کی آواز آئے گی تو تم نہ سنو گے، نہ کان دھرو گے، بلکہ وہ آواز تمہیں بھاری پڑے گی، وہ آواز تمہیں چپتی ہوئی محسوس ہو جائے گی، اس لیے تم سننا نہیں چاہتے. بنیادی وجہ یہ ہے، اگر تمہیں مثلا اب انٹرپریٹیشن میں اگر فرض کرے کہ کوئی عرب جو ہے شاعر آئے اور जाहिलियत के अशार 2 घंटे पढ़ता रहे, तुम सुनते रहोगे। अगर कोई ढोल बाजे पीटने वाला मौसीकार आए और 2-3 घंटे मौसीकी बजाए, तुम महजूज हो जाओगे, बड़े लज्जतों के साथ सुनोगे। लेकिन अगर मुकाबले में एक वलीउल्लाह, जो वजह तखलीक के कायनात है, वो तुम्हें अच्छी बातें बताना शुरू कर दे, 5 मिनट भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो। इसलिए कि तुम्हारा जो मिजाज है, वो मिजाज में वो कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? बचपन से वालिदैन ने तुम लोगों की परवरिश हराम हलाल देखे बगैर की है। आज नतीजा ये है, उसका नतीजा ये है। इसलिए अहादीस में जो हमें इतना ज्यादा ताकीद किया है कि गलती से भी इंसान कोई अगर ऐसी चीज खा लेता है, तो मैंने अर्ज किया था कि एक तरीका तो ये है कि वो इस्तग़फार पढ़ता है, दूसरा तरीका ये है कि वो जो है इस्तबरा करता है। ये जो 40 की चलाकशी का तस्करा है, ये इसी वजह से है। और अफा और अवलिया अल्लाह हमें एक रास्ता बताते हैं, कहते हैं कि अपने वजूद से बुराइयों को दूर करने का एक रास्ता ये है कि आदमी कम से कम 40 दिन तक क्या करे। अब दरवाजा खुला हुआ है नीचे वाला, बिल्कुल सलावात बर मोहम्मद वाले।
अच्छा
40 दिन तक ब्रेक पानी
अच्छा
वाह। बस मैं इस यहाँ इस हिस्से में सिर्फ एक और इशारा करना चाहूंगा। ये जो लफ्ज आया है ज़ियारत अरबईन में, जिसकी तिलावत हम करेंगे, वह बजाला। बजाला एक होता है आता, एक होता है बजाला, एक होता है ईता। तीनों में फर्क है। जब कहें बजाला का लफ्ज इस्तेमाल होता है, बजाला उस इनायत को कहते हैं जिसके बदले में इंसान कुछ लेता नहीं, इसको कहते हैं बजाला। बजाला महजतहू फीका, आपने लोगों को परेशानी, हैरत, इल्मी गलती और अमली गुमराही जहन में रखें। इंसान कभी आइडियोलॉजिकली गलती कर बैठता है और कभी प्रैक्टिकली, आइडियोलॉजिकल क्लियर है, मुमकिन है, अकीदा साफ है, सही है, अमल में धोखा खा रहा है। रिवायात में ऐसे लोगों के बारे में आया कि कुछ लोग ऐसे हैं अकीदा अच्छा रखते हैं, बुरा अमल रखते हैं, अच्छे अकीदे के बुरे लोग, रिवायात के अंदर है, अच्छे अकीदे के बुरे लोग। मासूम ने फरमाया कि उन लोगों को नजात नहीं मिलेगी जिनका अकीदा अच्छा हो, अमल बुरा। अच्छे अकीदे के बुरे लोग, एक पूरा चैप्टर है हदीस के अंदर। तो फरमाया, देखे इमाम आली मकाम दो काम करना चाह रहे थे, एक अकीदे की दुरुस्तगी भी करना चाहते थे नजरियाती तौर पर, दूसरा मैदान अमल में भी उनको क्या गुमराही के रास्ते से नजात दिलाना चाहते थे। और इन दोनों काम के लिए वाबाजाला, बदले में इमाम कुछ मांग नहीं रहे थे उनसे, कुछ डिमांड नहीं कर रहे थे, बजल किया इमाम ने, सखावतमंदी की, अता किया, बख्श दिया उन्हें, इनायत फरमाई इमाम आली मकाम। और ये इनायत का लेवल क्या है, हम इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में इसका तस्करा करेंगे। और मैं जहन में रखें कि अगर मैं कुरान मजीद में बयान शुदा किसी किरदार को, मुकद्दस किरदार के बारे में तस्करा करके उसको करबला के साथ मुकायसा करना चाहूं, तो नाऊज़ु बिल्ला व नस्तजीरु बिल्ला, हतमन ये हमारी कोशिश नहीं है कि हम किसी को घटाना या बढ़ाना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं, बल्कि सच्चाई बयान हो रही है। क्योंकि एक एतराज़, आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी और दीगर मजाहिब के लोग भी कहते हैं कि आप लोग मिंबर पे किसी एक अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान बयान करते हुए नबियों की आप घटाते क्यों? नहीं, नऊज़ु बिल्ला, घटाया नहीं जा, हकीकत बयान की जा रही है। क्योंकि एक ऐसा ही मुकायसा होने जा रहा है, तो पहले मैं अलर्ट कर रहा हूं, इस मुकायसे का मतलब नऊज़ु बिल्ला किसी नबी को कमतर दिखाना नहीं है, बल्कि उन नबी से बरतरों को पेश करना है और समझाना है, जो कि है कुरान मजीद कह रहा है, तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, दूसरा पारा है, ये दूसरा पारे की बिगिनिंग है। उसके अंदर फरमाया हमने एक नबी को दूसरे नबी पर बरतरी दी है या नहीं? बरतरी का निजाम कुरान ने मुतारफ करवाया है, हम तो नहीं कर रहे हैं। तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, इंसानों को एक दूसरे पे बरकरी फजीलतें दी है या नहीं दी है, कहा जानने वाला न जानने वाला बराबर तो नहीं हो सकता है या नहीं है, मुत्तकी परहेजगार और गैर मुत्तकी बराबर तो नहीं है, आलिम और गैर आलिम बराबर तो नहीं है, बरतरियां हैं ना। बस एक नुक्ता जहन में रखें, अल्लाह सुबहान तआला जब भी किसी को कोई फजीलत और बरतरी अता करता है, चाहे, गौर कीजिएगा, बहुत अहम जुमला कहने जा रहा हूं, चाहे वो आम इंसान हो या अल्लाह के नबी हो या वली हो, अवलिया अल्लाह हो या अंबिया अल्लाह, जहन में रखें, या कोई कौम हो, कोई कबीला हो, कोई इलाका हो, इस बरतरी वो फजीलत के साथ जिम्मेदारी हमेशा हुआ करती है। नंबर एक, जितना रुतबा बड़ा होगा जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी होगी। दो, नंबर तीन, जितना रुतबा बड़ा होगा जिम्मेदारी उतनी बड़ी होगी, उतनी ही बड़ी कुर्बानी भी देनी होगी। तीन, ये उसूल है, इसको हम कहते हैं सुन्नताए इलाही, इलाही सुन्नतें, ये अल्लाह ताला का काम, जिसका जितना रुतबा बड़ा उसकी जिम्मेदारी उतनी बड़ी, जिम्मेदारी जितनी बड़ी उतनी ही बड़ी तकलीफें मुश्किलात उस जिम्मेदारी को निभाने में अता करनी। एग्जाम्पल देते हैं, नॉर्मल से ऊपर की तरफ जाते हैं, बनी इसराइल को फरमाया, बनी इसराइल फद्दलतुकुम अलल आलमीन, सूरह बकरा है, पूरा का पूरा बनी इसराइल के ऊपर बात हो रही है, कुरान का सबसे तूलानी तरीन सूरा, एक गाय जिबा नहीं किया और इतनी जो है लंबी दास्तान खड़ी कर दी। फरमाया, बनी इसराइल तुम्हें दीगर अकवाम पर हमने बरतरी अता की, उस जमाने में तुम्हारी डिमांड, तुम यहां से मीनू लिख के बेचते थे डेली के बेस पर, मैं आज दोपहर को ये खाऊंगा, रात को ये खाऊंगा, सुबह ये खाऊंगा, खुदा की तरफ से वो पक के आते थे, तैयार डिश प्लेट में आते थे, इतनी तुम्हें बरतरी दी थी। और तुम्हारी बरतरी ये भी थी कि तुम्हारे दरमियान नबी भेजा गया था, शरफ था ये, मकाम था, रुतबा था तुम लोगों के लिए कि नबी जनाब मूसा और दीगर अंबिया तुम्हारे दरमियान आए, लेकिन साथ में तुमसे तुम्हारी जिम्मेदारी ये भी थी कि इज़हब इला फिरौन इन्नहू तगा, ये फिरौन जालिम डिक्टेटर, अब वो कह रहा है मैं खुद खुदा हूं, अना रब्बुकुमुल आला, सबसे बड़ा रब मैं हूं, जाओ उसकी तरफ और उसे रोको, उसका मुकाबला करो, उसके जुल्म और सितम का मुकाबला करो। जब जिम्मेदारी निभाने का वक्त आया, तुम में से बहुत से बनी इसराइल ने क्या करना शुरू कर दिया, बहाने करने शुरू कर, जब बहाने शुरू हो गए तो बरतरी भी खुदा ने छीन ली वापस ले ली। एक बात, दूसरी बात, हम अपने लेवल पे आते, अगर अल्लाह सुबहान व तआला किसी को किसी इलम की मारिफत देता है, कोई भी इलम, ठीक है, शुरू में आपको अर्ज कर दिया है, कोई भी इलम गैर शरई इस्लामी नहीं है, गैर दीनी इलम कोई भी नहीं है, सारे इलम दीनी है, कोई ना कहे ये दीनी ये गैर दीनी। हाँ, आप एकेडमिक लेवल पे जो डिवीजन है वो कायम कर सकते हैं, जैसे ये फैकल्टी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, वो आईटी की है, वो मेडिकल की है, ये दीनी है, वो सोशियोलॉजी है, ये इकोनॉमी है, ये कर सकते हो आप, नहीं कह सकते हो जो अरबी लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है, तफसीर पढ़ रहा है वो दीनी, जहां आईटी पढ़ाई जा रही है वो गैर दीनी, जहां फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हैं वो गैर दीनी, ये नहीं कह सकते आप। शुरू में अर्ज किया था क्योंकि ये जितने उलूम हैं ये दो जगहों पे जाके दी एंड हो जाता है, या हम अल्लाह की जात के बारे में गुफ्तगू करते हैं जो इल्म दीन है, इल्म कुरान है, इल्म हदीस है, इल्म फिका है, या हम सिफातुल्लाह के बारे में गुफ्तगू करते हैं जो ये कायनात के ऊपर रिसर्च करना है, यही साइंस है, यही जो आप कर रहे हैं फिजिक्स पढ़ना बायोलॉजी पढ़ना, ये क्या है कायनात, कायनात के ऊपर रिसर्च करने का मतलब क्या, सिफात है खुदा, अल्लाह खालिक है, कायनात उसकी मखलूक है, मखलूक पर रिसर्च हो रही है या नहीं है, अल्लाह खालिक है, हकीम है, दाना है या नहीं है, इंसान उसकी मोस्ट सुपर क्रिएशन है, अशरफ है मखलूक है ना, उसके बारे में मेडिकल के साइंस के अंदर तहकीक और जुस्तजू हो रही है, तो ये गैर इलाही कैसे हो गया भाई, ये तुम हमारे दिमाग में डाल दिया गया। सलावत बर मोहम्मद वाले
मोहम्मद
मोहम्मद। तय था कि आपकी ज्यादा जहमतें ना लूं आज, लेकिन सरकमटांसेस और सिचुएशन ऐसी है कि थोड़ा वक्त लेना पड़ रहा है। मोमिनीन के साथ में इंतजार में है कि इंशाल्लाह ताला तमाम मोमिनीन और मोमिनात को तौफीक मिले। अगर कोई शरी वजह है, माकूल सबब है, तो अपनी जगह दुरुस्त, अदरवाइज उनको इन मजालिस से खुद को महरूम नहीं करना चाहिए। ना समझे मेरे न जाने से मजलिस नहीं होगी, खुद को मजलिस से महरूम कर रहे हैं। मोहताज हम हैं, अहले बैत नहीं है, नऊज़ुबिल्लाह। मजलिसें हमारी मोहताज नहीं है, हम मजलिसों को जिंदा नहीं करते, मजलिसें हमें जिंदा करती हैं। सही है ना, ये हकीकतें। टेक्निकली तौर पर भी इसको आप चेक करेंगे तो यही हकीकत सामने आएगी। सिर्फ ये नहीं, जज्बाती इमोशनल बात नहीं कर रहा हूं, टेक्निकल भी ऐसा है, रेशनल भी ऐसा है, लॉजिकल भी ऐसा है, और ये तारीख इसकी गवाह है, चाहे अभी की तारीख हो या माजी की तारीख। ये मजलिसें ना हो, इंसान मुर्दा हो जाता है, खासकर इन मुल्कों में रहने वाले, उनको तो हमें हमेशा रिसाइकल की जरूरत पड़ती है, रूहानी तौर पर बाबा रिसाइकलिंग की जरूरत पड़ती है। सिर्फ बाहर की रिसाइकलिंग सीखना काफी नहीं है, खुद को भी रिसाइकल के, रिसाइकल कहाँ हो जाएगा, ये रिसाइकल मुसल्ले पे होगा, इन मजलिस में होगा, इस जिक्र में होगा, जिक्र पढ़ना, जिक्र सुनना, बयान करना, ऐसे बैठना है, ताहिरों और मुताहिरों की जिक्र करने से इंसान ताहिर हो जाता है, पाकिजगी आती है, रिसाइकल हो जाता है। क्यों? कुरान ने ताहिर मुताहर ला यमसु इल्ल मुताहरून कुरान के बारे में फरमाया, अहले बैत के बारे में क्या फरमाया, जो कुरान नातिक हैं क्या फरमाए, उताहिराकुम ततहीरा, सलावत बर मोहम्मद वाला। बस आजीजो, कोई भी इलम क्या है, वो गैर इलाही नहीं है, बस लिहाजा ये इलम होना, चाहे आईटी का इलम है, मेडिकल का है, कोई भी है, ये एक बरतरी है, ये एक फजीलत है, फजीलत है तो जिम्मेदारी भी है। इसी तरह दौलत का होना, सरवत का, अपनी जरूरत से ज्यादा अच्छा कमाई होना, अच्छी तनख्वाह मिलना, अच्छा बिजनेस चलाना और अच्छी आमदनी होना, ये भी काइंड ऑफ बरतरी है, फजीलत है, ये भी एक लेवल की। इस फजीलत के साथ भी जिम्मेदारी है। एक आदमी, फर्ज करते एग्जाम्पल देता हूं, एक आदमी 100 यूरो कमाता है, साल के आखिर में 100 यूरो उसकी बचत होती है। मासूम फरमाते हैं, जनाब 100 यूरो बचा गए अपने सारे एक्सपेंसेस करने के बाद, तो 20 यूरो निकालो ना, खुम्स के पैसे, एक माल इमाम है, आधा माल सादात है, ये खुम्स किधर जाएगा जनाब? भाई आपके लिए यहाँ सेंटर की जरूरत है, वहां मस्जिद की जरूरत है, वहां इबादतगाह की जरूरत है, वहां एक यतीम की परवरिश की जरूरत है, भला करे ये सारे उम्र किसने चलाना है? अल्लाह फरमाता है, मैं इजाफा रिजिक पता है क्या करता हूँ, दूसरे की रिजिक तुम्हारे पास डालता हूँ, इसलिए इसको वाजिब करार दिया। जकात का मामला है, दीगर मामला है, तो हर बरतरी अपने अंदर एक क्या है, जिम्मेदारी रखती है। वाजह है, बातें क्लियर है, चलते हैं जरा एक स्टेज आगे। नबियों को आप देखें, जो जितना अजीम नबी, उसके सामने इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतने बड़े चैलेंजेस, ऐसा जुमला किसी नबी ने आज तक इरशाद नहीं फरमाया जो हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया है, कि हुजूर पाक फरमाते हैं, मा उजिया नबीयुन कत्तु मिसला मा उजीनी। अल्लाहु अकबर। हमारे सामने जनाब इब्राहिम की दास्तान है जिसे आग में डाला गया, जनाब यहया की दास्तान है, जनाब याकूब की दास्तान है, जनाब अय्यूब की दास्तान है, ये सारी दास्तान है हमारे सामने, उनकी मुश्किलात हैं वगैरह, हजरत मूसा की है, हजरत ईसा की है, जनाब मरियम जो है मरियम की है, ये सारी दास्तान हमारे सामने है ना। हुजूर पाक फरमाते हैं, ये सारे नबी कार नबुवत अंजाम देने में, जिम्मेदारी निभाने में बड़ी मुश्किलात इन्होंने फेस किया है, बड़े चैलेंजेस को फेस किया है, लेकिन खुद हुजूर पाक फरमाते हैं, लेकिन जिस तरह मुझ नबी को अजियतें दी गई है ना, जिस तरह के हालात का सामना मुझे करना पड़ा है, किसी नबी को नहीं करना पड़ा है। हमें एक तो बिगिनिंग ऑफ इस्लाम में नजर आता है हुजूर पाक को अजियतें दी हैं, लेकिन ये अजियतें उस लेवल की नहीं है हत्ता जो गुज़श्ता अंबिया में नजर आती हैं। तो हुजूर पाक के इस जुमले का मतलब कैसा समझा जाए? हुजूर पाक के, अब गौर कीजिएगा, कारे रिसालत को, न रिसालत को, कारे रिसालत, कारे नबुवत न की नबुवत, कारे नबुवत और है, नबुवत और है, कारे रिसालत और है, रिसालत और है, रिसालत खातम है, नबुवत खातम है, कारे रिसालत जारी है, कारे नबुवत जारी है। अब ये कारे नबुवत बाद अज हुजूर पाक कौन अंजाम देगा? आपकी पाक व ताहिर आल, खास तौर पर आसमान इमामत और विलायत के 14 सितारे। अब आप देखें इनमें से हर एक को, एक भी 11 इमाम मासूम है, 11 इमाम मासूम, एक इमाम मासूम नेचुरली इस दुनिया से गए हैं। खुद मासूम फरमाते हैं, मा मिन्ना मक्तूल औ मसमू, या हमें जहर दा के कत्ल किया गया है या हमें तलवार के जरिए से। हर एक इमाम की हयात तैयब ताहिर को निकालें, मोस्ट ऑफ जो हयात तैयबा का जो आपको साल नजर आएंगे वो जेलों में, नजरबंदियों में हैं, कैद बंद, घर के अंदर नजर बंद, कोई उनसे मिलना नहीं चाहता है, मिलने नहीं दिया जाता है, आपके चाहने वालों को पाबंद सलासल, अजियतें, तंग करना वगैरह वगैरह है या नहीं है? क्यों? कायनात में अल्लाह की जात के बाद हुजूर पाक सबसे ऊंचा मकाम व मर्तबा व रुतबा रखते हैं, सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी भी हुजूर पाक की है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम का नबी था, दायरे का जुग्राफिया महदूद था, यहाँ तक नबी हैं, पूरी दुनिया के लिए फिलहाल आपकी नबूवत ने, मूसा ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत नूह, शीसो व इला आखिरी, हुजूर पाक रहमत लिल आलमीन है, कयामत तक के लिए है, शरीयत ने कैंसल नहीं होना, कंटिन्यूली जारी रहना है और आपकी आग आग ने इसको जारी रखना है। लिहाजा मुश्किलात भी, जिम्मेदारी बड़ी है, मुश्किलात भी आप सहेंगी, इसीलिए अब हुजूर की आल के अंदर सैयदुश शोहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस तरह की कुर्बानी दी है, ये बेमिसाल और बेनजीर कुर्बानी।
हर मोहम्मद वाले मोहम्मद
बस
बुलंदर सलावा।
वाह, सल्ले अला मोहम्मद। लिहाजा लिहाजा सुने, गौर से सुने, लिहाजा क्योंकि सैयदुश शोहदा ने कुर्बानी अजीम दी है, मकाम भी इतना ही अजीम। पहले मैंने अर्ज कर दिया कि मासूम ने फरमाया कयामत के दिन मकाम और मंजिलत सैयदुल शहदा को देखकर अंबिया रश करेंगे, ये मकाम, इस जैसा कोई और मकाम नहीं। अल्लाह, बिला कैद और शर्त इमाम आली मकाम के हाथ में ये इख्तियार होगा कि जिसको चाहे शफाअत दे। हत्ता मासूम ने सवाल किया, पांचवें इमाम से सवाल हुआ कि जब फरमाया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हमारी आज की जबान इस्तेमाल करता हूँ, आज की टर्मिनोलॉजी, कहा कि सब शफी हैं, सब ने शफात देना है, हत्ता कि उस्ताद शागिर्द को भी शफात दे सकता है, अगर नेक इंसान है, बाप अगर अच्छा हो तो अपने बेटे तक तो शफात दे सकता है, हमसाये को नहीं दे सकता तो कम से कम बेटे को दे सकता है, वगैरह वगैरह, एक हद तक वो भी। तो मासूम सब सवाल किया, या अपने रसूलुल्लाह सैयदुल शोहदा अलैहि सलाम के बारे में आपने फरमाया कि सबसे ज्यादा वसी शफाअत सैयदुल शोहदा अलैहि सलाम के इख्तियार में है, फरमाया कि ये इख्तियार कितना है, मैं अब आज की टर्मिनोलॉजी के साथ बोलता हूं, ये अनलिमिटेड है, जिसको चाहे इमाम शफा, जिसको चाहे इमाम शाफे बने और उसे शफाअत बताए, ये मकाम व मंजिलत मिल रहा है क्योंकि इमाम जैसी कुर्बानी किसी भी। अब आते हैं उस बात की तरफ जो मैंने अर्ज किया था, बस एक नबी की मिसाल दे रहा हूं और कुरान की आयतें, आपको पता है मैं शुरू से कोशिश होती है जो बात आप कर रहे हैं बड़ा दावा वो आप इतनी बड़ी दलील से भी साबित करके जाएं, वगरना आप मान तो लेंगे, आप माशाल्लाह मुझसे ज्यादा मुमकिन है इस मौजू के अंदर साहिबान ईमान भी हैं, साहिबान फहम व फरासत भी हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी होती है कि हल्की बात नहीं होनी चाहिए, दावा बड़ा किया है तो दलील भी इतनी बड़ी होनी चाहिए ताकि काने हो जाए। सोशल मीडिया का दौर है, वीडियो क्लिप दाएं बाएं से काट के छोटा पीस निकाल के पोस्ट कर दिया जाता है और कहते हैं ए लो जी इनके तो ये अकायद हैं, ये नजरियात हैं, ये मुसलमान भी हैं या नहीं है, होता है या नहीं होता? हम किसी पुराने जमाने में नहीं है कि किसी गली कोचे में किसी ने कुछ बोल दिया, पता नहीं चला, चार बंदों ने सुना, मान के चले गए। ये वो दौर नहीं है, ग्लोबल विलेज में है हम, है ना। ग्लोबलाइजेशन, मैं आ रहा हूँ ग्लोबलाइजेशन पे, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल विलेज। आप तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है भाई, है लेस देन सेकेंड यहां से वहां इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। चलते हैं कुरान मजीद की तरफ। जनाब हजरत नूह के एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ। जनाब हजरत नूह फरमाते हैं, काला, जनाब नूह ने कब रिसालत के काम अंजाम दिए, अंजाम दिए, आखिरी लम्हा आया, तूफान की बातें हो रही हैं, खुदा की तरफ से अजाब नाजिल की, कब, किसके लिए, कौम नूह के ऊपर अजाब की बातें। और उस वक्त जनाब नूह अल्लाह से एक डिमांड करते हैं, फरमाते हैं, काला, नूह ने कहा, रब्बी, मेरे परवरदिगार, इन्नी दाऊतु कौमी, मैंने अपनी कौम में बड़ी तबलीग, बड़ी दावतें दी, दावत तबलीग दी, लैलन मनहारा, सुबह शाम देता रहा। कुरान है, बहुत सिंपल सिंपल, आप में से बहुत से अरब मुल्कों में रहे। इन्नी दाऊतु, मैंने दावतें दी हैं कौमी, किसको, अपनी कौम को, सुबह शाम, लैलन व नहारा। अच्छा जनाब नूह, तो आगे फरमाया, फलम यजिद हुम दुआई, मेरी दावतों का कोई खास फायदा इनके ऊपर नहीं, कोई असर नहीं, इल्ला फिरारा, जो जो मैं इनके ऊपर अच्छाई सिखाता हूँ, ये भागते भाग रहे हैं। तो अब डिमांड क्या है आपकी, अजाब मुब्तला कर दे इनको। क्या फरमाए, अपनी जहमत बयान कर रहे हैं ना, पैगाम खुदा की रसाई में मैंने क्या क्या एफर्ट्स किया, ये जनाब नूह बयान कर रहा है कुरान मजीद की जबान में अपने रब से, कि मैं सुबह शाम दावतें देता रहा, इनको बुलाता रहा, इबलाग करता रहा, तबलीग करता रहा, लेकिन ये भागते रहे भागते रहे। अब क्या है, अभी इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पनिशमेंट क्या होगी, तूफान नूह आएगा, कश्ती में आए तो बच गए, ना आए तो बेटा भी है तो डूब गए। तो मकाम नूह ये है कि 800 कुछ साल या 900 कुछ साल जनाब हजरत नूह दावत तबलीग देते रहे। आखिर में, अब मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, इसको कहें गुस्ताखी शुमार न कीजिएगा, जनाब नूह तंग आकर खुदा से कह रहे, खुदा है यार, ये तो फरार करते जाते हैं, है या नहीं है, ये मकाम नूह है। अल्लाह ताला का नबी था, उनकी जितनी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई उसी हिसाब से उस बात को क्या किया, मान लिया। अब चलते हैं दोबारा जियारत अरबईन की तरफ, लेकिन मकाम सैयद शोहदा, ये गौर कीजिएगा, मकाम सैयद शोहदा इमाम हुसैन ये है कि नहीं, फरमाते हैं, खुदाया मैंने मदीने से मूवमेंट शुरू की, मक्का गया, मेरे बाबा ने अपनी सारी जिंदगी लगाई, मेरे भाई ने भी लगाई, मैंने भी की, लेकिन ये कौम हिदायत पाने वाले नहीं है, इन पर अजाब मुब्तला फरमा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसी कोई जुमला कहा है, नहीं, बल्कि क्या फरमाया है हदीस अरबईन में, वबज़ल महजतहू फीका लियस्तनकिद इबादका मिनल जहालति वहैरतम मिनल दलाला। अल्लाहु अकबर, ये है मकाम हुसैन। फरमाते परवरदिगार, ए इमाम हुसैन अली सलाम, आप सिर्फ जनाब नूह की तरह तबलीग और इबलाग करते नहीं रहे, सुबह शाम, वो भी मेहनत थी जनाब नूह की, लेकिन इमाम हुसैन का मकाम ये है, लोगों की हिदायत के लिए बजलफी का, अपनी जान, घर बार, 6 माह के बच्चे तक बजलफी का बख्श दिया आपके रास्ते में कुर्बान कर, उसके बावजूद भी आखिरी वक्त में भी एक ऐसा जुमला इरशाद नहीं फरमाया कि परवरदिगार रहा उलाइल कौम गजब नाजिल फरमाए इनके ऊपर, ना ना, अल्लाह रहमतुल आलमीन का नवासा है, रहमतुल आलमीन का जानशीन है, सरापा रहमत है। अल्लाह, अंदाजा लगा लिया, ऐसा नहीं है कि हम लोग बगैर किसी इल्मी दलील और सबब के, जस्ट इमोशनली अटैचमेंट की वजह से अइम्मा को नबियों से ऊपर बना के दिखा रहे हैं, ये ऊपर और नीचे वाली बात ही नहीं है अजीजों। یہ وہ حقائق ہے جو قرآن بیان کرتا ہے ہمارے لیے. نوح نبی 900 سال سے زیادہ عمر کیا ہے, آخر میں کہہ رہا ہے انی دعوت لیلا و نہارا, لیکن یہ فرارا کرتے جاتے ہیں. امام عالی مقام نے تو یہ نہیں فرمایا, فرمایا اگر یہ ایسا ہے ان کون دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی, وہ تلواروں اگر محمد کا دین میرے قتل اور میرے خون بہائے بغیر استحکام نہیں پا سکتا ہے تو پھر میں تیار. جتنی تلوار
امام حسین علی مقام بلند ترین صلوات,
اللهم صل علی محمد و آل محمد. عزیزو یہ مقام حسین ہے, یہ مقام. اسی لیے سید الشہداء علیہ السلام کے بارے میں بس آپ کی زحمتیں میں اب تمام کرنے جا رہا ہوں, کیونکہ ہم نے زیارتیں بھی پڑھنی ہیں بعد میں, اور آپ کے لیے ایک اچھا وقت ماتمداری کے لیے بھی ہو. ہم 40 کے شب 40 میں ہیں, آلموسٹ داخل ہو چکے ہیں. اسی لیے حضور پاک نے ایک حدیث ارشاد فرمایا تھا امام کی شہادت سے پہلے, اور یہ حدیث دلچسپ یہ ہے تمام مسلمانوں کی معتبر کتابوں میں موجود ہے. کہیں الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, معنی وہی نکلیں گے. فرمایا تھا ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا. اللہ ابھی نواسا شہید نہیں ہوا, ابھی نواسے نے قربانی پیش نہیں کی, پہلے ہی نانا ارشاد فرما رہے حضور پاک لسان وحی, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, ہے نا حضور کا اٹھنا حضور کا بیٹھنا حجت ہے امت کے لیے, دین ہے امت کے لیے, ہے یا نہیں ہے؟ یہ حضور پاک فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مومنین کے صاحبان ایمان کے دلوں میں جو عشق و حرارت و ولولہ و جذبہ ایجاد ہوگا, لن تبردو ابدا, وہ کبھی کبھی بھی ہرگز ہرگز, وہ حرارت کیا ہے؟ ٹھنڈی نہیں پڑنے والی. اچھا یہ ہم نے کبھی کا ترجمہ کہاں سے کیا؟ قرآن پہ جاتا ہوں بس تیزی کے ساتھ, زیادہ آپ کو اس میں چھوٹی چھوٹی اس میں نہیں الجھاؤں گا, موٹی موٹی باتیں بتاؤں گا. سر قرآن مجید میں جناب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے, کوہ طور پہ جا کے کہا پروردگارا میری قوم بڑی جاہل ہے, مجھے کہہ رہی ایک نظر آنے والا خدا دکھ دے, وہ ہمیں ایک ایسا خدا لاؤ جیسے فلا فلا مذاہب کے ماننے والوں کے پاس ایسے خدا ہیں, وہ اپنے گھروں میں بھی رکھتے ہیں, صبح شام دیکھتے ہیں, اسے چھوتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, ہوا سے خمسہ میں وہ جو ففتھ سینس ہے نا اس سے باہر میری قوم نکل ہی نہیں پا رہی ہے. جیسے آج میٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر ففتھ سینس سے باہر کسی بھی علم و معرفت کو ایز اے نالج کنسیڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک بڑا ٹاپک ہے اپسٹیمولوجی, کو کے قائل ہی نہیں ہے, اکیڈمک ٹرمینالوجی ہے, یعنی وہ معرفت جو ففتھ سینس سے ہٹ کے حاصل ہوتی ہے, جس کو ہم اور آپ کرامات معجزات وحی ہیں, اس طرح کے روحانیات روحانی ترقی عرفان پرانی اصطلاحات میں صوفیزم وغیرہ وغیرہ کہتے تھے, اس کو ماننے کے لیے, اس کو ایز اے نالج دا ٹول آف نالج دا وے آف نالج کنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو سیم سچویشن حضرت موسیٰ کی قوم کے ساتھ تھا. فرمایا پروردگارا میری قوم ہے نا ففتھ سینس سے باہر نہیں نکل پائے, آپ مہربانی کریں, اب یہ مسئلہ آیا ہے مجھے آپ کی دیدار کرنا ہے, زیارت کرنا ہے, تاکہ میں ڈیفینیشن دے سکوں جا کے اپنی قوم کو. ٹھیک ہے عشق موسیٰ اپنی جگہ وہ ساری ٹھیک ہے, فی الحال جو پرابلم جس کی وجہ سے کوہ طور گئے ہیں اس کو ہم اسی حد تک رہیں گے, کیونکہ ادھر جائیں گے تو کل بہت سی باتیں آئیں گی, پھر عرفانیات میں جانا پڑے گا. فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کوہ طور کی ون آف مائی کیا ریکویسٹ از ٹو میں آپ کی کوئی جلوہ کوئی کچھ کچھ چیز دیکھ لوں گا کہ قوم کو جو بتاؤں میرا رب ایسا ہے. اوپر سے کیا ندا آئی قرآن مجید, فرمایا لن ترانی یا موسیٰ, موسیٰ تم مجھے ترجمہ ہرگز ہرگز کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. مطلب کیا؟ علماء تفسیر زمشخری سے لے کر علامہ طباطبائی تک کیا تفسیر کرتے ہیں, وَهُوَ لَا يُرَى فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ. غور کیجئے گا, यानी लन तरानी या मूसा, तुम मुझे हरगिज हरगिज नहीं देख सकते ए मूसा, का मतलब ये है न दुनिया में अल्लाह नजर आएगा न कयामत में नजर आएगा। अगर कहे पर गलती से किसी ने कोई हदीस टाइप की चीज डाली है कि खुदा जहन्नम में पांव डालेगा तो जहन्नम कहेगा मैं शेर हो चुकी हूँ, बच चुकी हूँ या सोने की कुर्सी पे बैठा, वो सब बकवास है, गलत है, तौहीद के मनाफी है। कुरान क्लियर कह रहा है ना दुनिया ना आखिरत में नजर आ सकता है। वाजे हो गई बात, लौटते हैं हदीस की तरफ। ये सारा मसला हदीस समझाना चाह रहा था, साथ में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई आपके पास तौहीद के हवाले से। अब हुजूर पाक ने फरमाया इन्ना लिकत्ल हुसैन हरारतुन फी कुलूबिल मुमिनीन लन तबरुदू अबदा लन तरानी या मूसा, सेम वर्डिक है। वो कुरान सामित है, यहां लिसान नबी कुरान नातिक है, दोनों आयतें हैं कुरान। मकाम अमल में हमारे लिए फर्क नहीं करता हदीस है या आयत, क्योंकि हम दोनों की उसी तरह पाबंद है कि उस पर अमल दरामद करें। शरफ और मंजिलत अपनी अपनी जगह, लेकिन मकाम अमल में हमारे लिए आयत भी वही है जो हदीस है, हदीस वही है, आयत, क्योंकि हमने दीन यहां से लिया। फरमाया कि देखें सैयदुल शुहदा की शहादत के बाद कोशिशें होती रहें, कब्रों को मिटाने की कोशिशें करें, प्रोपगंडे करें, लेकिन एक बात जहन में रखें, ये जो इश्क की हरारत है ना, ये कभी ठंडी हो नहीं सकती।
लब्बैक या हुसैन,
लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन,
बर
लब्बैक।
मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावात।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बस हजार मत, मैं आखिरी पॉइंट आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं और फिर हम मसाइल की तरफ बढ़ते हैं। देखें एक कंसेप्ट लोगों में पैदा हुआ आज है, ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, अगर मुनासिबत कोई और होती तो मैं डीपली इसको एनालाइज करने की कोशिश करता और कुरान और अहले बैत के फरामीन से कुछ अर्ज करता, लेकिन आज सिर्फ मैं इशारा करूंगा क्योंकि उस ये रिलेटेड है आज की मुनासिबत से भी और मौजूदा जो है हमारी जो एक खास हम माहौल में है रूहानी गम और हुजन के उससे भी। एक कंसेप्ट है ग्लोबलाइजेशन, पूरी दुनिया में एक यूनिवर्सल सिस्टम कायम हो जाए, एक ही जगह हुक्मरानी हो, कंट्रोल सिस्टम हो वगैरह वगैरह, क्योंकि दुनिया ग्लोबल विलेज हो चुकी है वगैरह, ये है अभी भी। यूनाइटेड नेशन का कंसेप्ट यहीं से निकला है, ये आपके पास जो नेटो मेटो हैं, ये जो बॉर्डर शॉर्डर खत्म किए हैं, ये कहते हैं ये फर्स्ट स्टेप्स हैं, इनके जो थिंकर हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं। तो मैं अखबारी बातें नहीं करता, मैंने पहले कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए, ये चीजें कोशिश करते हैं हम पढ़ें डीपली, डीपली जाके पढ़ें, अखबारात की रिपोर्टों तक ना रहें बल्कि डीपली जाके उन किताबों को पढ़ें जो इसके पीछे जो थ्यूरीज होती है, जो आइडियोलॉजीज होती हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी को क्रिएट किया जाता है। तो ये एक कंसेप्ट इनके पास क्या है, मौजूद है, और एक तसव्वुर, तसव्वुर क्या, एक हकीकत कुरान और अहले बैत ने भी हमारे लिए दी है। वो हकीकत क्या है कि नंबर एक फरमाया ज़हन में रखो रिसालत लिल आलमीन है, कुरान हुदल लिन्नास सारे इंसानों के लिए कयामत तक है, इमामत का तसलसुल क्या है, कयामत तक पूरे इंसानों के लिए हिदायत की चराग है, नजात की कश्ती है, और ये भी ज़हन में रखो कि अल्लाह के नुमाइंदों का जो तसलसुल है ना, जो जानशीन पैगंबर हैं, उस कड़ी की, उस तसलसुल की जो आखिरी कड़ी है, जो आखिरी नूर है, वो इमाम जमाना की शक्ल में पर्दे गैब में मुंतजिरे जुहूर है, और आपका जुहूर होगा तो मक्का मदीना करबला नजफ तक महदूद नहीं रहेगा आपका जुहूर, आपकी इमामत का दायरा सिर्फ किसी खास सर्कल मिडिल ईस्ट के अंदर नहीं रहेगा। बहुत से नबियों का सर्कल मिडिल ईस्ट से आगे नहीं था, फलस्तीन से किसी का आगे नहीं था, किसी का जो है अराक से आगे, बाबल से आगे नहीं था, जो पुरानी जमीनें थी सरजमीन, किसी का मक्का मदीने से आगे नहीं था, लेकिन क्योंकि ये रहमतुल लिल आलमीन का नुमाइंदा है एक, अल्लाह का आखिरी नुमाइंदा है दो, इस नुमाइंदे ने पूरी दुनिया के ऊपर अपनी हुकूमत कायम करनी है तीन, لہذا جب یہ ان کا ظہور ہوگا تو یملا الارض ہوگا، پوری زمین پر کیا ہے بھر دے گا، یہ پوری زمین کو بھر دے گا اپنے نظام سے. کون سا نظام؟ عدل و انصاف پر مبنی نظام، قسطاً و عدلہ، ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ ذہن میں رہ گیا. میں نے یہ ساری کیوں آپ کو بیان کیا ہے، میں ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. چلتے ہیں ہمارے عصر حاضر کے ایک جو ہے انسانوں کے درمیان ایک عالم، ایک ولی اللہ شخصیت، جس کا اتفاق سے آج تذکرہ جمعے کی نماز کے بعد گاڑی میں بھی ہو رہا تھا. یقیناً اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہے، ائمہ کی عنایتیں ان کی شامل حال ہیں. میری مراد عارف باللہ مرحوم حضرت آیت اللہ العظمیٰ، آیت اللہ بہجت کی بات کر رہا ہوں. کیا فرماتے ہیں؟ میں نے ان کے حوالے سے یہ بات میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ میں چاہ رہا ہوں بولنے اور سننے میں ثواب کا زیادہ اضافہ ہو جائے، وگرنہ میں اور حوالے سے بھی بیان کر سکتا ہوں، کتاب کے حوالے سے بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں ایک عارف باللہ، عبد مخلص خدا، عبد مخلص امام زمانہ کے حوالہ دے دوں تاکہ ثواب میں اضافہ ہو جائے. کیا فرماتے ہیں؟ غور کیجئے گا. جب امام کا ظہور ہوگا، امام اپنا تعارف کرائیں گے. غور کیجئے گا، امام اپنا تعارف کرائیں گے. کیسے تعارف کروائیں گے؟ امام اپنا تعارف کیسے کروائیں گے؟ یہ آیت اللہ بہجت کے الفاظ ہیں، اور آیت اللہ بہجت نے ہماری کتابوں سے ہی کوٹ کیا ہے. جب امام تشریف لائیں گے تو پوری دنیا کے اندر امام کی مبارک زبان طاہر و اطہر کے ساتھ یہ میسج ہر کسی تک پہنچ جائے گا، الا یا اہل العالم، او دنیا والو سنو، ان جدی الحسین قتل عطشانا، ان جدی الحسین حسین قتل غریبا، وآلہ اخذت مستحقت سبایا. او دنیا والو سنو، میں وہ ہوں کہ جس کے جد امجد کو پیاسا شہید کیا، میں وہ ہوں جسے مظلوم غریب مارا گیا، میں وہ ہوں جس کی آل کو اسیر کر کے در بدر پھرایا گیا، میرا ظہور ہو چکا ہے. عزیزو، اس لیے کل یوم عاشورا ضروری ہے، اس سے بڑھ کر کل ارض کربلا ضروری ہے. ان مجالس کو ہلکے میں نہ لیں. یورپ میں بیٹھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مجلسوں سے غافل ہو جائیں، عزاداری سے غافل ہو جائیں، عزاداری کو ہم سیکنڈری اس میں ڈال دیں اپنی پرائیورٹی لسٹ کے اندر. یہ کام ہم نے نہیں کرنا. ہر زمین کو امام حسین سے واقف کرانا ہے، ہر شخص کو امام حسین سے واقف کرانا ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں ایک وقت وہ آئے کہ 40 میں اب تک کے ڈیٹا کے مطابق اس وقت کربلا میں 1.5 کروڑ سے زیادہ زائرین کا فگر آ رہا ہے. وہاں پر ایک وقت وہ آئے کہ عربوں میں پہنچ جائے یہ تعداد. یہ اور ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ اور ہماری اور آپ کی ڈیوٹی ہے. عزاداران مظلوم، اگر اہل بیت کا گھرانہ اتنی مشکلات اور مصائب کو سہ سکتا ہے تو ہم چھوٹی سی تکلیف نہیں سہ سکتے؟ اپنے اسکیجول کے اندر، پرائیورٹی لسٹ کے اندر ہم ان چیزوں کو نہیں ڈال سکتے ہیں؟ بے خدا، یہ بہت بے توفیقی ہوگی، یہ بہت ہی انتہائی غلط بات ہوگی کہ ہم یہ خیال کریں مجلس ٹھیک ہے، ہو رہی ہے، وہاں پہ سنا ہے، ادھر ہو رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، محرم آیا گیا پتہ نہیں چلا. کیونکہ میری لائف ایسی ہو گئی، میں کیسے ملک میں رہتا ہوں جہاں پر محرم بھی آتا ہے جاتا ہے، عیدیں بھی آتی ہیں جاتی ہیں، میرے لیے ساری چیزیں ایکول ہو چکی ہیں. یہ درست نہیں ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں، میں آپ براہ راست حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے، ترجمہ کروں گا. چھٹے امام فرماتے ہیں اپنے ایک محبوب صحابی جو عالم تھے، زرارہ ابن عیون کہتے ہیں، یا زرارہ، اے زرارہ سنو، ان السماء بکت علی الحسین 40 صباحا دما، کہ 40 دن تک آسمان سید الشہداء علیہ السلام کے اوپر خون کے آنسو روتا رہا. जिसकी आंखें बीना थी, जिसकी रूह पाक थी, उसने यकीन इस खून को नाजिल होते हुए देखा होगा। जिनकी आंखों में गुनाहों के पर्दे नहीं थे, 40 दिन यकीनन उन्होंने इस खून को देखा है। इमाम मासूम फरमाते हैं, इन्ना समा बकत अलल हुसैनी 40 सबाहन बिद्दम, खून के आंसू है। फिर फरमाते हैं, इन्नल अर्जा बकत 40 सबाहन बिसुआ, जमीन कहते हैं जमीन 40 दिन तक अपने आप को गम और शोक की सियाह चादर ओढ़ के बुका करती रही। फिर फरमाते हैं, इन्ना शम्स बकत 40 सबाहन बिलकुसूफ वल उम्र, कहते सूरज ने अपने इर्द गिर्द एक काला और सुर्ख एक नकाब ओढ़ा था। ये नकाब 40 दिन तक ओढ़े रखा सूरज ने। बिना आंखें होती तो यकीनन उसको देखती। फिर फरमाते हैं, व इन अल मलाइका बकत 40 सबाहन अल हुसैन, आसमान के मलाइका जमीन के मलाइका 40 दिन तक, आशुरा से लेकर 40 दिन तक सैयदुल शोहदा अलैहि सलाम की गुर्बत पर, उनके खानदान की कई दो असीरी पर, उनकी मजलूमियत और बेकसी पर रोते रहे, मलाइका गिरिया करते रहे। बस अजीजों, बस मैं सिर्फ इशारा करना चाह रहा हूं, आज क्या है हम अरबईन में, अरबईन का मतलब समझते हैं अहले बैत अलैहिम सलाम, जो असर आशुरा के बाद जिनकी मुश्किलात का आगाज हुआ था, असर आशुरा के फौरन बाद शाम गरीबा में किन किन अजियतों से इनको गुजरना पड़ा। वो बच्ची जो बाप के सीने के बगैर सोती नहीं थी, अचानक अगर उसके उसके मुंह पर तमांचे पड़ने लग जाए और कोई रोकने वाला न हो। जिक्र आया है मक्का और मदीने के बारे में, इब्ने आसम कूफी लिखता है कि मासूम सकीना सलामुल्लाही अलैहा को मैंने कभी नहीं देखा कि वो जमीन पर चल रही हो, मैंने कभी देखा अली अकबर ने उठाया हुआ है, कभी देखा अब्बास ने उठाया हुआ है। कहने कि मैंने एक मर्तबा देखा यानी मस्जिदुल आराम के करीब ये बच्ची दौड़ते हुए आई और इसने छलांग पार कर जनाब अब्बास के गले में अपनी बाहें डाली, और अब्बास है कि इसे दाएं बाएं सर से लेकर पैर तक चूमता था, अपने सीने से लगाता। अजीजो, यहां से शुरू होता है, कूफे की तरफ लेके जाते हैं। कूफे में मैं सख्त मसाइब पढ़ नहीं पाता, लेकिन मैं आज हिम्मत करने की कोशिश करूंगा, मौला तौफीक देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कुछ तलख हकायक आपके कानों तक पहुंच जाए। कूफे के करीब जब ये पहुंचे हैं तो कूफे के रास्ते में कुछ आवारा लोग बैठे हुए थे, शायद इब्ने ज़ियाद ने इन आवारा लोगों को भेजा था, जिन्होंने सबसे पहले अपनी जबान गंदी की और अहले बैत की शान में बड़ी गुस्ता किया कि वो अल्फाज में अपनी जबान में ला नहीं सकता। बिहार उल अनवार के अंदर अल्लामा मजलिसी लिखते हैं, फिर प्रकट के अंदर लिखते हैं, वाह मुसीबत वाह, कहना हुआ अल्लामा मजलिसी लिखते हुए खुद क्रिया कर रहे हैं, क्योंकि किसी वाकये को लिखते हुए ब्रैकेट लगा के ये जुमले नहीं लिखे अल्लामा मजलिसी ने, लेकिन उन ओबाश कूफियों के बारे में लिखते हैं तो कहते हैं वाह मुसीबत वाह गुरबत। इशारा करता हुआ अजीज तो इन ओबाशों ने अपनी जबान गंदी की, गुस्ताखी में गुस्ताखिया की, जब अहले बैत ने कोई रद्द अमल न दिखाया, इन्होंने पत्थर उठा के अहले बैत की तरफ मारना दिया। बस मैं एक इशारा करता हूँ अजीजों, जब ये बलून पत्थर फेंकते थे, सानिया जहरा तड़प के कभी इमाम जैनुल आबदीन के सामने खड़ी होती, कभी मासूम सकीना के आगे खड़ी हो जाती थी। असीरों का काफिला कूफे के सारे मरहले से गुजर गया। बाजार कूफा में बीबी ने खुतबे दिए, कुछ अरसा कूफे की जेल में कैद रही। इब्ने ज़ियाद के सामने ڈٹ کر اپنا موقف بیان کیا، اس کے بعد کہا اسیروں کو سوار کرو، شام لے کے گئے۔ شام میں جو کچھ ہوا عزیزو آپ کے سامنے میں پڑھ چکا ہوں، بس میں ایک واقعے کو دہرانا چاہتا ہوں جو میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں۔ شام کے دروازے میں ایک بوڑھا شخص آتا ہے، امام زین العابدین کے قریب پہنچتا ہے اور کہتا ہے خدا کا شکر ہے جس نے تم لوگوں کو ناکام کیا۔ اس شخص نے لفظ تو بڑا تلخ استعمال کیا، میں نے اسے نارمل کرنے کی کوشش کی، لیکن اگر آپ سننے کی سکت رکھتے ہیں تو میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ یہ ملعون کہنے لگا خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل کر دیا۔ امام ہے، ہدایت کے چراغ ہے، پیارے میٹھے نرم لہجے میں کہنے لگے یا شیخ، اے شیخ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کون ہو، میرے لیے اتنا کافی ہے کہ تم امیر کے مخالف ہو۔ کہا شیخ میری بات سن، تو قرآن پڑھتا ہے نا؟ کہنے لگے میں مسلمان ہوں، قرآن پڑھتا ہوں۔ کہہ رہے تم آئے تطہیر کو جانتے ہو نا، یو تحریرکم تطہیرہ کو جانتے ہو؟ ہاں میں جانتا ہوں، یہ تو اللہ کے نبی کی آل کی شان میں اتری ہے۔ کہہ رہے تم پھر کیسے تم مجھے نہیں جانتے؟ کہہ رہے تم ہو کون؟ تعجب کرنے لگا، کہا کہ تم علی بن ابی طالب کو جانتے ہو؟ بے خدا میں جانتا ہوں، لیکن شامی ان کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، لیکن میری رائے ان کے بارے میں ایسی نہیں ہے۔ کہا ان کے بیٹے حسن ان کو جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں۔ تو حسین کو بھی جانتے ہوں گے؟ کہا جانتا ہوں۔ کہا میں انہی کا بیٹا ہوں، نیزے پہ جو سر چڑھا ہوا۔ عزیز و مختصر کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ دربار یزید میں بی بی نے خطبے دیے، دربار یزید میں سید السجاد نے خطبے دیے، اپنے تعارف سے شروع کیا، کوفے میں اس کی ضرورت نہیں تھی، شامیوں کو بتایا میں کون ہوں۔ کہا دیکھو سنو، حج کرنے جاتے ہو نا تو میں اس زمزم کا بیٹا میں ہوں، اس کا وارث میں ہوں، مکہ جاتے ہو نا خانہ خدا میں تو انا بیت اللہ، ارے اس بیت اللہ کا وارث تو میں ہوں، پر مینا جاتے ہو؟ کہا وہ مینا کا وارث میں ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ کہنے لگے انا تو رسول اللہ، میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں، انا تو فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، انا تو علی المرتضیٰ، پھر کہا انا ابن حسین الشہید۔ بعض روایات میں امام نے ہاتھ سے اشارہ کیا اس تشت کی طرف جو تخت یزید میں رکھا ہوا تھا، کہا انا ابن حاضی عزاداران امام مظلوم، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، سیدہ زہرا مجھے معاف کرنا، میں آج اس طرح مسائل پڑھ رہا ہوں جو بہت کم مجھے کبھی جو ہے پڑھنے پڑتے ہیں۔ عزیزو یہ مرحلہ گزر گیا، حکم ہو گیا کہ اسیروں کو لے جا کر قید کریں۔ اب کہاں پر قید کیا ہے؟ دیکھیں یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ الفاظ تاریخ کے اندر آئے ہیں۔ اہل بیت کو کیسی جیل میں قید کیا گیا، آل رسول کو کس قسم کی جیل میں رکھا گیا؟ کہتے وقیل ان ذالک بعد ان اجلسهن فی منزل لا یکنهن من برد ولا حرب قاموا فیه شهر المنس حتی اقشرت وجوههن من حرارة الشمس۔ کہہ رہے ہیں خاندان عزت طہارت کو بغیر چھت کے ٹوٹی دیوار کے ساتھ ایک ایسی جیل میں قید کیا گیا جہاں سورج کی تپش نے سورج کی حرارت میں اتنی اذیت دی تھی کہ بیویوں کے چہرے سے جلد اکھڑ رہی تھی جیسے کہ کسی نے لوچاؤ۔ تاریخ کے اندر یہ جملے آئے ہیں۔ عزیزو یہاں پر بڑے واقعات پیش آئے ہیں، مثلا بے کسی کے واقعات ہیں، میری ہمت نہیں ہوتی میں بے کسی کے واقعات پڑھ سکوں، لیکن میں آج ہمت کر کے ایک واقعہ پڑھتا ہوں۔ ایک وقت زندان کے دروازے پہ دستک ہو جاتی ہے، دوپہر کا وقت تھا، بیویاں آواز دیتی ہیں کون ہے؟ کہا मैं एक हाजतमंद खातून हूँ, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। बीबियो दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल दिया सानिया जहरा ने, देखा कि एक खातून सामने खड़ी है और हाथ में बहुत कुछ खाने पीने की कुछ चीजें हैं। कहा कि खैर है, कहा कि देखें मैं इस मोहल्ले में रहती हूँ जो तुमा का मोहल्ला है, मैं एक क्रिश्चियन खातून हूँ, आपके बारे में बड़ी बातें मैंने सुनी है, बात दरअसल ये है कि मेरी बेटी बड़ी बीमार है और आपके काफिले में बेवाएं भी हैं, यतीम भी हैं। हमारे पादरी कहते हैं कि जब तुम पर कोई मुश्किल आए ना, तो मजबूरों बेवाओं और यतीमों को सुनना था, नजफ की तरफ रुख किया और कहा बता वामसी बता कतस्बहना मिन अलआरामिल वलयतामा बाबा जा, आज तेरी जैनब पर, आज तेरी खानदान पर देखे कि क्या वक्त आ गया अजी। तो शाम के अंदर ये वाकयात फैलते गए, शाम के लोगों को जूं जूं आगाही बढ़ रही थी, मालूमात बढ़ रही थी, तो लोगों में चीमागोया होने लगी, बहुत बातें होने लगी। बस मैं आखिरी जुमले पढ़ रहा हूँ, आपकी जहमत तमाम कर रहा हूँ। बहुत बातें होने लगी, एक तरह का दबाव बढ़ने लगा यजीद के ऊपर, और यजीद ने एक और चाल चली, कहा कि बस अब फिर रहा ही दिया जाए, खानदान इस्मत तहारत को रहा कर दिया जाए। खुलासा करता हूँ, रहाई का हुक्म हुआ, रहाई की बात हो गई, और इमाम जैनुल आबदीन अलैहि सलाम जो कैदी हैं और हाकिम के सामने शराइत रखते हैं, किस चीज की? आजादी की शराइत। ये फतेह इमाम है, ये है असल में कामयाबी और फतह। कैदी ये कहे हाकिम वक्त को, जो जाबिर है, जिसके कब्जे में हर चीज है, उसको कहे हम आजादी लेते हैं अगर तुम ये हमारी शराइत कबूल करो। तो उन शराइत में से एक शर्त ये थी कि देखो जितनी चीजें हमसे छीनी गई हैं, जितनी तबरुकात हमारी करबला में छीनी गई हैं, वो सब हमें वापस की जाए, उन तबरुकात से हमारी बड़ी यादें हो। और कहा दूसरी ये कि तमाम शहीदों के सर हमें वापस किए जाए, जिनमें से अक्सर के सर अभी तक नौ के सिधा पे चढ़े हुए हैं। बस अजीजों मैं सिर्फ तबरुकात तक इशारा करूंगा, कल मुझे हिम्मत पड़ती है तो मैं आगे मसाइल पढ़ने के अगर काबिल रहा तो मैं पढ़ सकूंगा। इधर जिंदान शाम में ऐलान हुआ कि हमारी अमानतें जो हमसे छीनी गई थी वो वापस आ रही हैं, दरवाजे पे दस्तक हुई, सबसे पहले एक चादर अंदर पेश, ये चादर जानते हैं किसकी थी, सबकी निगाह पड़ी, सबने मुड़कर एक बीवी की तरफ देखा, वो सानिया जहरा, सब उनकी मलिका बीवी, करबला की शेर-ए-दिल खातून, ज़ैनब कुबरा की चादर थी। जो ये चादर आ गई, बीवियों ने कहा वाह अब्बासा वाह हिजाबा, उसको कुछ देर के बाद दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खुला, एक छोटी सी प्लेट के ऊपर एक अंगूठी लेकर एक शख्स आ गया, कहा बीबियों हम तलाश कर रहे हैं, ये एक अंगूठी मिली, हमें नहीं मालूम किसकी है। अंगूठी पर नजर पड़ता था, आप समझ गए हजार। बस हौसला रखिए, हौसला रखिए, बस एक जुमला कहने जा रहा हूँ, हौसला रखिए, अभी थोड़ा वक्त गुजरा था, दरवाजे पे फिर दस्तक हुई, छोटी सी प्लेट पे दो कालों की बारी, बीवियों ने पानी को देखा, खुद पर खुद को कब्र सकीना पे गिराया, कब्र
सकीना तेरी बात गई, लेकिन अब तू नहीं रही। अल्लाह रसूल अल्लाह को अय्यामुन कलबियन कलिमु परवरदिगारा हर वादा ये इस्मत व तहारत की, इस मजलूमियत व इस्तकामत का वास्ता, इस सब्र हौसले और पैगाम इलाही को पहुंचाने में मुश्किलात व मसाइब का वास्ता। परवरदिगारा तेरे गुनाहगार बंदे हैं, खताकार बंदे हैं, दोस्तदार कुरान और इतरत मोहम्मद वाले मोहम्मद
कैबल
कल इंशाल्लाह मैं कल इंशाल्लाह इसको पढ़ूंगा। जब ये करबला पहुंचेगा काफिला, मैं उस वक्त जरूर पढ़ूंगा इंशाल्लाह। अजीज दो इसका मतलब पता है, दुखों और गमों के पहाड़ की वजह से जिस जवान की कमर 100 साल पुशरी की तरह झुकी हो, जिसके दाढ़ी और बाल सफेद हो चुके हो, परवरदिगारा फानवादा ये इस्मत व तहारत का वास्ता। परवरदिगारा हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी दरगाह में कबूल और मकबूल फरमा। परवरदिगारा अहले बैत का तذکرہ हो चुका है, यकीनन यहाँ फरिश्तों का नुजूल हो चुका है, हो रहा है, मौजूद है। परवरदिगारा इमाम जमाना की नजर करम मौजूद है, अम्बिया व औलिया की नजर करम मौजूद है, इन मुकद्दस हस्तियों का वास्ता, तुझे अपने फरिश्तों का, तुझे अपने नबियों और वलियों का वास्ता। परवरदिगारा जितने भी यहाँ पर मोमिनिन और मोमिनात हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, स्टूडेंट हैं, परवरदिगारा जो भी इनकी हाजात हैं अपनी दरगाह में कबूल और मकबूल फरमा। जिस घर के अंदर परवरदिगारा आश्रय, ये पूरा अशरे अरबईन हुआ, अशरे जो है चहलुम हुआ, परवरदिगारा हमारे बरादर कुमेल उनकी जो भी हाजात है अपनी दरगाह में कबूल और मकबूल फरमा। तमाम यहाँ पर हाजरीन के परवरदिगारा उनकी जिंदगियों में, उनके घरों में, उनकी औलाद में, परवरदिगारा हत्ता जो इल्म हासिल करने आए हैं इस सिलसिले में, हर हवाले से जिंदगी दुनिया आखिरत हर चीज में खैर और बरकत का नुजूल फरमा। परवरदिगारा हमेशा कुरान और इतरत के साथ मुतमसिक और मुतवसिल रहने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा इन तमाम जमीनों को, इन इलाकों को, इन शहरों को जिक्र कुरान और इतरत, जिक्र हुसैन से मुनव्वर करने की तौफीक इनायत फरमा। पैगाम हुसैनी, पैगाम आशुरा, पैगाम ज़ैनबी, परवरदिगारा अजादारी, मातमदारी, यसीन जनी जो रूह की तहारत का सबब है, जो इंसान के किरदार को बनाती है, हमें हर जगह फैलाने और पहुंचाने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा दामे दिरहमे सुखने कदमे जो भी इस सिलसिले में खिदमत अंजाम दे चुका है, इससे पहले हमारे बरादरान जो माजी में भी अंजाम दे चुके हैं, जो आइंदा अंजाम देंगे, परवरदिगारा अपनी गैब से बरकतों का नुजूल फरमा। उनकी जान व माल, औलाद, इज्जत व आबरू में नूर व खैर व बरकत इनायत फरमा। या हुसैन या हुसैन या हुसैन जी। अच्छा
अगर
अच्छा
लेट भी हो रहे तो तालिब भाई थोड़ा सा अगर लेट हो रहे हैं तो
माशाल्लाह माशाल्लाह, आ जाएं, हम आपका इंतजार कर रहे थे कि आप पहले आ जाएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।